अथर्ववेद मंत्र तथा ब्राह्मण दो विभागों में विभक्त हैं। अथर्ववेद की मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद है, ब्राह्मण भाग की प्रश्न उपनिषद है। मुंडक उपनिषद का विचार आज होना है, प्रश्न उपनिषद का विचार कल संपन्न हुआ। मुंडक उपनिषद का शांति मंत्र है, भद्रं कर्णे भी श्रुणुयामदेवा इत्यादि। इस मंत्र का अर्थानुसंधान भी करना जरूरी है। मंत्र पाठ से अदृष्ट उत्पन्न होता है, पुण्य उत्पन्न होता है, केवल पाठ से भी। लेकिन अर्थानुसंधान पूर्वक यदि मंत्र का उच्चारण होता है तो मन भी शुद्ध हो जाता है। मंत्रार्थ होता है परमात्मा। मंत्र के अखार जब मंत्रार्थ का अनुसंधान करेंगे तो मंत्र के अर्थाकार चित्तवृत्ति बनेगी, तो मंत्रार्थ का संस्कार चित्तवृत्ति से मन में पड़ेगा। इसलिए अर्थ जान करके मंत्र का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। तो जिस उपनिषद का जो मंत्र है उसके अर्थ पर भी चर्चा उपनिषद के विचार के प्रारंभ में की जाती है। तो भद्रं कर्णे भी श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरंगैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर् व्यशेम देव हितं जदायुः स्वस्तिन इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्तिनः पूखा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यह अथर्ववेद का शांति मंत्र होने से मुंडक उपनिषद का यही शांति मंत्र माना जाएगा। इसमें प्रार्थना मंत्रों में होती है। मनुष्य जीवन का प्राप्तव्य है परम पुरुषार्थ मोक्ष। केवल अपने सामर्थ्य से यह जीव अपने प्राप्तव्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, इसे मोक्ष रूपी प्राप्तव्य की प्राप्ति के लिए सहायक की आवश्यकता है। और जीव का सहायक माना जाता है अधिदैव को, अध्यात्म का अनुग्राहक है, सहायक है अधिदैव। तो देवाः ये संबोधन है, ओम भद्रं कर्णे भी श्रुणुयाम देवा, ये जो वाक्य है इसमें देवा ये बहुवचन है। तो अध्यात्म में अलग अलग जो उपकरण है उनके अनुग्राहक देवता भी अलग अलग हैं, और उन देवताओं के अनुग्रह से ही हमारे ज्ञान की तथा कर्म की साधनभूत इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। उनके अनुग्राहक देवताओं का अनुग्रह यदि इंद्रियों को प्राप्त न हो तो इंद्रिया अपना अपना कार्य नहीं कर पाती। केवल आप की प्रेरणा मात्र से आपको आपकी उपकरणभूत इंद्रिया जो आप कहते हैं वह ला करके नहीं देती। उसके लिए अनुग्राहक देवता का अनुग्रह भी आवश्यक है। वे जो अनुग्राहक देवता हैं उनको संबोधित किया जा रहा है कि हे देवा, ऐसा अलग अलग इंद्रियों की अनुग्राहक देवता को जिज्ञासु संबोधित करके कह रहा है कि कर्णे भी ही भद्रम शृणुयाम। तो कर्ण इंद्रिय की अनुग्राहक देवता जो दिशाएं हैं, अलग अलग इंद्रिय की अलग अलग अनुग्राहक देवता होती है। तो कर्ण यानी श्रोत्र इंद्रिय, और श्रोत्र इंद्रिय की अनुग्राहक देवता माना गया दिशाओं को। तो दिशा रूपी जो कर्ण इंद्रियों की अनुग्राहक देवता, उन्हें प्रार्थना की जा रही है कि आपका श्रोत्र इंद्रिय को ऐसा अनुग्रह प्राप्त हो जिससे श्रोत्र इंद्रिय भद्र श्रवण करे। श्रृणुयाम ये है विधि अर्थ में लकार हुआ है, विधि लिंग है। वो प्रार्थना अर्थ में भी होता है। ये आज्ञा नहीं की जा रही है देवताओं को, जीव देवताओं से प्रार्थना कर सकता है, अपने से जो बड़े हैं उनसे कुछ प्रयोजन सिद्ध करना है तो ये करो, ऐसी आज्ञा नहीं की जाती, प्रार्थना की जाती है। इसलिए यहां श्रृणुयाम ये प्रार्थना अर्थ में लिंग लकार समझना कि हम श्रवण करें। श्रृणुयाम का कर्ता है वयम। श्रवण इंद्रिय का व्यापार हमसे हो तो सुना जाता है शब्द को। वो शब्द होता है दो प्रकार का, एक आपका अहित करने वाला, आपका आपको अनर्थ पहुंचाने वाला, दुख पहुंचाने वाला। तो आपके दुख का निमित्तभूत शब्द वो अभद्र शब्द है, अभद्र वाक्य है। जिन वाक्यों को सुनने से तत्काल या कालांतर में दुख हो जाए ऐसे वाक्य को कहा जाएगा अभद्र वाक्य। और उन अभद्र वाक्यों का भी ग्रहण श्रोत्र इंद्रिय करती है। और भद्र वाक्य कहा जाता है कि जिसको सुनने से तत्काल या कालांतर में आपको सुख होता हो, आपका हित होता हो, कल्याण होता हो, उन वाक्यों को कहा जाता है भद्र वाक्य, कल्याणकारी वाक्य। अनर्थ करने वाले वाक्य अभद्र वाक्य, कल्याण करने वाले वाक्य भद्र वाक्य। तो अभी तक अभद्र वाक्यों को सुनते आ रहे हैं इसीलिए नहीं हो पाया कल्याण। इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से श्रोत्र इंद्रिय ईश्वर ने हमें शब्द ग्रहण करने के लिए दी हुई है। उससे यदि भद्र श्रवण होता, कल्याणकारी वाक्यों का श्रवण होता तो निश्चित कल्याण होता, और कल्याण का मतलब है मुक्ति मोक्ष, तो जन्म न होता। जन्म हुआ है इससे लगता है कि भद्र श्रवण नहीं हुआ है, इसलिए प्रार्थना करते हैं कल्याण चाहने वाले, श्रेय चाहने वाले मुमुक्षु श्रोत्रेन्द्रिय के अनुग्राहक दिशाओं को कि हे देवा वयम भद्रम करने भी श्रुणियाम। श्रोत्र इंद्रियों से हमारा कल्याण करने वाले वाक्यों को सुने, और कल्याण करने वाले वाक्य हैं, कल्याण होता है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति से, और ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति जिन वाक्यों से होगी उन वाक्यों को कहा जाएगा कल्याण करने वाले वाक्य, भद्र वाक्य। और ब्रह्मात्म एकत्व के ज्ञापक वाक्य हैं उन्हें कहा जाता है वेदांत, उपनिषदें। इन्हीं से अहम ब्रह्मास्मि ऐसी ब्रह्मात्म एकत्व विषयनी अनुभूति होती है, और वही कल्याण यानि मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए भद्र शब्द का अर्थ निकलेगा एक प्रकार से वेदांत, कल्याणकारी वाक्य है वेदांत वाक्य। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि भाग्यवान कौन है, तो वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः। जो हमेशा वेदांत वाक्य में रमण करते हैं, जिनका मन वेदांत अर्थ के चिंतन में निरंतर लगा रहता है, वे बड़े भाग्यशाली हैं। कौपी नमंत खलु भाग्यवंत, ऐसे और भी विशेषण है, तो इसमें एक विशेषण है वेदांत वाक्येषु सदा रमंत। इसलिए भद्र शब्द का अर्थ निकलेगा उपनिषद वेदांत। तो हम अपने कानों से वेदांत श्रवण करें, वेदांत श्रवण करने में हमारे कान समर्थ हो। और भगवान ने ज्ञान के साधन के रूप से पांच इंद्रिया दी है ना आपके, पांच ज्ञान इंद्रिया। तो आंख से क्या करें, अभी तक तो इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से संसार का रूप देखते आ रहे हैं, उससे कल्याण नहीं हुआ। इसलिए जैसे शब्द दो प्रकार का है, एक अनर्थकारी दूसरा कल्याणकारी, ऐसे रूप भी दो प्रकार का हुआ, जो आंख का विषय है नेत्र इंद्रिय का विषय है वो दो प्रकार का, एक आपके अनर्थ का हेतु रूप और एक कल्याण का हेतु रूप। कल्याण का हेतुभूत रूप माना जाता है आपके सामने एक संसार का रूप है, एक परमात्मा का रूप है, तो परमात्मा का जो सगुण साकार स्वरूप है उसे भी देखोगे तो फिर संसार के रूप से वैराग्य होगा। भगवान का जो दिव्य नाम रूप है, संसार का भी नाम रूप है, संसार भी नाम रूप है, और संसार का नाम रूप आत्मक कांटा जिसके मन में चुभ गया है। भगवान निर्गुण निराकार है, अशब्द है, अरूप है यद्यपि, लेकिन अशब्द अरूप परमात्मा भी नाम रूप धारण करके अभिव्यक्त होते हैं। क्यों धारण करते हैं? तो भागवत में कहा गया कि आपके उद्धार के लिए भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ता। भगवान को नाम रूप से रहित जो स्वरूप है उसे थोड़े देर के लिए छोड़ करके, उनके मन में तो नहीं छूटता लेकिन आपके लिए वो छोड़ देते हैं और नाम रूप धारण कर लेते हैं आपके तरह ही, क्योंकि इस जीव को अनादिकाल से नाम रूप ग्रहण करने का ही अभ्यास पड़ा है। नाम रूप के बिना मन एक क्षण भी निरालंब नहीं रहता। तो जिनका मन नाम रूप का आलंबन लिए बिना एक क्षण भी नहीं रहता, माना जाता है उनके मन में जगत का नाम रूप ऐसा गड़ा है जैसे खलियान में किसान पहले वो जो अपना धान आदि है उसको निकालने के लिए वो मेड़ वो गाड़ता है ना, खूब थुना निखरन न्याय से अच्छी तरह से हिला हिला करके देखता है, क्योंकि कहीं एक बैल बांध करके फिर उसको चलाना पड़ता है उस पर गेहूं आदि सूखे हुए उस पर। आजकल तो मशीन से निकलते, लेकिन पहले बैल चला करके जब निकालते थे तो कई बैलों की लाइनें उस पर चलती थी ना, और वो थुना खूंटा जो है यदि ढीला होगा तो बैल तो उखाड़ करके चले जाएंगे खलियान से बाहर लेकर के, इसलिए मजबूती से गाड़ा जाता है, हिला हिला करके फिर ठूसता है और अच्छी तरह से गाड़ता है। ऐसे ही इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से संसार का नाम रूप हमने अपने मन में वैसा गाढ़ा है, वैसा मजबूती से स्थापित किया है कि खलियान में किसान जैसे उस थुना को मजबूती से स्थापित करता है। अब उसे निकालने के लिए यानी जगत के नाम रूप में से आपके मन को निकालने के लिए भगवान को नाम और रूप धारण करना पड़ता है। नाम भी धारण करते हैं, रूप भी धारण करते हैं, और भगवान के जो नाम हैं वे हैं एक प्रकार से वेद मंत्र, और इन वेद मंत्रों को पुष्पदंताचार्य जी ने कहा है वेद कैसे हैं, तो मधुस्पीता वाच परममृतम निर्मितवतः। ये वेद हैं मधुस्पीत, स्पीत कहते हैं युक्त, और मधु कहते हैं मधुर को, मधु कहते हैं शहद को, और शहद और स्वीत शब्द का अर्थ होता है सना हुआ। तो जैसे किसी का हाथ मधु से सना हुआ हो तो मधु से सने हुए हाथ को साबुन लगा करके धोएगा कि चाटेगा? वो मधु को धो करके नाली में बहा देगा कि चाट लेगा? चाट लेगा। शहद तो सहसा नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो मधुर है, सुख पहुंचाने वाला है, तो ऐसे वेद मंत्र कैसे हैं? तो मधुस्वीत है, यानी मधु से सने हुए हैं। जब उनको उनका अर्थ भी न जानो, लेकिन कोई ढंग से परंपरा से वेद अध्ययन किए हुए वेद पाठी वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कान में कितना सुख पहुंचता है। वे हैं भगवान के मधुर नाम, आपको सुख पहुंचाने वाले नाम। तो यदि ठीक से वेद उच्चारण करने वाले लोगों के वेद उच्चारण का श्रवण करते हैं तो बाकी जगत के शब्द यदि डीजे आदि बज रहा हो और वेद पाठ भी हो रहा हो तो वेद पाठ बंद कराओगे कि डीजे को बंद करवाओगे? तो इसलिए कि आपको जिसमें ज्यादा आनंद आएगा उसको शुरू रखोगे और जिसमें आनंद नहीं आ रहा है उसे हटाओगे। तो डीजे है जगत का शब्द और भगवान का शब्द है वेद मंत्र। यदि वेद मंत्र में आनंद आ रहा है तो जगत के शब्द को आप हटाते हैं ना। और मान लो आपके क्षेत्र में नहीं बज रहा है और जहां बज रहा है डीजे वहां से आप जाकर के बंद कर नहीं सकते, अधिकार नहीं है आपका, तो उस समय फिर क्या करोगे? अपने मन को वहां जाने से रोकोगे और वेद मंत्र के श्रवण में प्रयत्न से लगाओगे, एकाग्र करोगे, वहां से मन हट जाएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि लेगा। तो भगवान ने मधुर नामों को धारण कर लिया, वो क्यों? कि जगत के नाम से आपका मन भगवान के मधुर नामों को सुन करके हट जाए, आपको भगवान की तव कथामृतम तप्त जीवनम ये बन जाए। इसके लिए भगवान ने दिव्य नाम धारण किया और वो आपके कल्याण का हेतु बनेगा। आपके चित्त को उस भगवान के नामों का श्रवण करते करते अर्थाकार यदि बनता है तो भगवत संस्कार से संस्कारित करेगा। भगवान के संस्कार चित्त में पड़ेंगे तो जगत के संस्कार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ऐसे भगवान का सगुण स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप, दिव्य जो स्वरूप है उसे एक बार देखोगे तो फिर जगत का जो रूप है उस जगत के रूप को देखने में आंखें प्रवृत्त नहीं होगी। इसके लिए भगवान रूप भी धारण करते हैं। तो दो रूप हो गए, एक जगत का रूप वो है अनर्थकारी, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते के अनुसार बुद्धिनाशात प्रणश्यति कहा जाता है। और भगवान के रूप का चिंतन करते 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 भगवान के संस्कार से संस्कारित मन होगा और अच्छी तरह से आपका भगवान के सगुण साकार स्वरूप में मन जब एकत्रित होगा, जगत का आलंबन छोड़ करके भगवान के दिव्य नाम रूप का ही आलंबन आपका मन लेगा तो फिर भगवान ही एक ऐसा है कि वह आपको अपना दास बनाए रखना नहीं चाहते। वे चाहते हैं ये तो वो तो जानते हैं ना वास्तविकता, ये तो मेरा ही स्वरूप है। और जब तक बुद्ध आप कार्य उपाधि के साथ मिले हुए तब तक अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्र हैं। कौन ऐसा पिता होगा कि स्वयं जो है खूब धनी है और ये चाहे कि मेरा पुत्र कटोरा लेकर के रोज एक समय का भोजन भीख मांग करके खा ले, ऐसा कोई चाहेगा? पिता का तो हृदय होता है कि मेरे से भी ज्यादा संपन्न, सुख सुविधा संपन्न, प्रतिष्ठित मेरा पुत्र बने। तो भगवान भी ये चाहते हैं कि आप भगवान जिस आनंद से रहते हैं, जिस आनंद में मग्न रहते हैं, अपने स्वरूप आनंद में, उसी में आप भी निमग्न हो जाए, आप भी डूब जाए। वो आनंद स्वरूप आप है, वो स्वरूप आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक जगत के नाम रूप से आपका मन निकलता नहीं। चाहने पर भी भगवान आपको निरतिशय आनंद की अनुभूति नहीं करा सकते जब तक आप नहीं चाहोगे। जब तक आप मुक्त होना नहीं चाहोगे तब तक भगवान की भी सामर्थ्य नहीं कि आपको मुक्त करें। यद्यपि वो सर्वसमर्थ है, लेकिन इस विषय में उसको आपने असमर्थ बना दिया। वो चाहता है आपको मुक्त करें, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि हम मुक्त हो जाए, तो भगवान की वो चाह तब तक चाह ही बनी रहती है जब तक आपके अंदर तीव्र मुमुक्षा नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के चाहने पर भी मुक्त नहीं होते जब तक आप मुक्त नहीं होना चाहोगे। एक बड़े प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जैसे बिस्मिल्लाह खां थे, ऐसे ही नामी शहनाई वादक और उनकी परंपरा का वह एक प्रकार से था शहनाई वादन रूप कार्य, पिता दादा परदादा आदि से चला आ रहा था। और उनका एक पुत्र था, वे चाहते थे कि ये हमारी परंपरा की विद्या है शहनाई वादन, वो भी सीखे अपना पुत्र। लेकिन उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी शहनाई वादन सीखने की। वो रोज समझाते कि बेटा इसी के कारण अपना खूब संसार में नाम है, प्रतिष्ठा है परिवार की, और वो कहीं मेरे साथ ही समाप्त न हो। अब मैं वृद्ध हुआ हूं, कुछ दिन का मेहमान हूं, और बाद में तो तुमको ये नाम चलाना है, इसलिए सीखो। बहुत सारे दूसरे लोग आकर के सीखते हैं उनसे, लेकिन ये पुत्र उनका बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी। तो क्या हुआ कि एक दिन पिता ने कहा कि मैं तो आज तुमको सिखा करके ही रहूंगा। वो है पहले तो समझाया और कहा कि आज तो सिखा करके ही रहूंगा, जबरदस्ती सिखाऊंगा। तो कहा नहीं, मुझे सीखना ही नहीं तो आप कैसे सिखाओगे। तो उसको पकड़ा और लेटा दिया उसके छाती पर बैठ गए पिता, और शहनाई मुंह में लगा दी जबरदस्ती। कहा अब तो सीखोगे? कहा अब भी नहीं सीखूंगा। एक घंटों तक बैठे रही आप मेरे छाती पर और मेरे मुंह में शहनाई को पकड़े रखिए, मैं अंदर से फूंक ही नहीं लगाऊंगा। तो अंदर से मैं फूंक नहीं लगाऊंगा तो शहनाई बजेगी नहीं, तो आप कैसे सिखाओगे? थक करके अपने आप उठ जाओगे। का मतलब ये हुआ कि जब जिसको सिखाना है उसको यदि नहीं सीखने की इच्छा है तो जबरदस्ती पिता भी नहीं सिखा सकते, अध्यापक भी नहीं सिखा सकते। ऐसे जब तक हम मुक्त होना नहीं चाहते तब तक भगवान भी हमें मुक्त करना चाहेंगे तब भी मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए उपाय अपनाते हैं आपके अंदर जिससे मुक्त होने की इच्छा प्रकट हो, ऐसे उपाय करते हैं। तो भगवान ने अपने अशब्द अरूप स्वरूप को थोड़े देर के लिए छिपा करके सशब्द बन गए, स्वरूप बन गए और उस दिव्य नाम रूप के प्रति जगत के नाम रूप में अटका हुआ जो मनुष्य का मन है उसे आकर्षित कर लिया और आकर्षित करने के बाद फिर एक भगवान ही ऐसे हैं कि उनको आपसे कुछ भी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, बाकी तो आपसे कोई न कोई स्वार्थ चाहते हैं। आप उनके उपयोग में आते हैं तो आपके लिए कुछ सहायता पहुंचाते हैं, नहीं उपयोग के दिखते हैं तो उसी समय फिर आपको अपने से अलग कर देते हैं। लेकिन भगवान कोई आपका आपसे प्रत्युपकार नहीं चाहते और आपका हित ही हित चाहते हैं। इसलिए जब सगुण साकार स्वरूप में भगवान के अच्छी तरह से मन एकत्रित हो जाता है, जगत से हट जाता है, तो धीरे से भगवान अपना जो नाम रूपात्मक स्वरूप है उसे आपके मन से हटा देते हैं और जो उनका वास्तविक स्वरूप है वह आपके मन में आपके आत्मा के रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, ये कहो या किसी भगवान के भक्त ने भगवान से कहा कि दासोह मितिया बुद्धि पुरासित यदुनंदने, दास शब्द चोरितस्तेन गोपी वस्त्रापहारिणा। कहते हैं पहले मैंने भगवान की भक्ति करने का निश्चय कर लिया लेकिन देखा तो भगवान और अपनी तुलना की तो भगवान के सामने मैं दूर दूर तक कहीं टिकता नहीं, इसलिए भगवान का सखा बनना या पिता बनना या और कुछ संबंध स्थापित करके भक्ति करना तो संभव नहीं है। तो अपने आप को यत्किंचन देख रहा हूं तो सोचा कि भगवान के साथ संबंध तो जोड़ना है, भगवान की भक्ति तो करनी है, तो क्या करें। तो दास भाव से भगवान की भक्ति कर लें, मैं यत्किंचित हूं भगवान का दास हूं, भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं। तो दासो अहम इति या बुद्धि पुरासित यदुनंदने, तो भगवान कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया, मैंने अपने आप को उनका दास स्वीकार कर लिया, लग गया उनकी सेवा में। तो सेवा करते 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 आपस में स्वामी सेवक भाव संबंध दृढ़ होता गया और जैसे जैसे दृढ़ होता गया स्वामी सेवक भाव संबंध, लेकिन बचपन की जो आदतें पड़ती है ना वो सहसा नहीं छूटती है। तो भगवान कृष्ण को भी बचपन से ही आदत पड़ी हुई है चोरी करने की, इसलिए वेद भी उन्हें कहते हैं कि चोरानाम अग्रगण्य, चोरों में अग्रगण्य है वो। स्तेनानाम पतये नमः, स्तेन कहते हैं चोर को, रुद्र में आता है ना कि स्तेना नाम पतये नमः, तो पति कहते हैं स्वामी को, चोरों के स्वामी है, चोरों के सरदार है। तो बचपन में तो मक्खन चोरी करना, फिर थोड़ा बाल्यावस्था आई तो चीरहरण करना, कहीं कुछ करना, ये उनका स्वभाव पड़ा है, संस्कार पड़ा है। अब बड़े हो गए, द्वारकाधीश बन गए, लेकिन राजा बनने के बाद भी वो स्वभाव नहीं गया। ये द्वारकाधीश बनने के बाद में उनके भक्त ने ये श्लोक लिखा होगा, तो इसलिए कहते हैं वो चोरी का संस्कार जब प्रकट हुआ उनके मन में तो किसी को भी बख्शते नहीं है, चोरी सबकी करते ही है। कहते हैं जिनका सोने का धंधा होता है, गहने बनाने का, वो किसी को बख्शते नहीं है। सोने आप सोना ले जाकर के दे दो ये करने के लिए कि इसका ये गहना बना करके दे दो, तो उसको फिर गरम करके हथौड़ी से मारना होता है, कुछ करना होता है ना, गढ़ना होता है सोने को, तो फूंक लगाते लगाते पिघले हुए सोने को कहते हैं अंदर ले लेते हैं मुंह में। कैसे देखोगे आपके सामने बैठे बैठे जितना सोना दिया है उसमें से थोड़ा बहुत तो फूंक से अंदर ले लेंगे और फिर वो दे देंगे, आपको लगेगा कि चोरी तो हमें तो सामने था, कुछ नहीं चोरी इन्होंने की। ऐसे भगवान कृष्ण का भी चोरी का स्वभाव होने से क्या करते हैं वे कि उन्होंने देखा कि इसकी भी चोरी करनी है, लेकिन है क्या इसके पास, जो कुछ होगा वो ना चोरी करेंगे, तो देखा कुछ भी नहीं है, ये तो ये किंचित है, दास है, नौकर है, यदि कुछ होता तो नौकरी थोड़ी करता, सेवा थोड़ी करता, तो कुछ नहीं दिखा तो कहते हैं दासो अहम इसमें से का कुछ तो हराना ही है, तो दास शब्द को ही हर लिया, दास शब्द का हरण कर लिया, चोरी कर ली, तो दास शब्द चोरितस्तेना गोपी वस्त्रापहारिणा, गोपी के वस्त्रों का हरण करना शील हुआ है, स्वभाव हुआ है जिनके जिनका, उन्होंने मेरे दासो अहम इस वाक्यस्थ दास शब्द की चोरी कर ली, तो दास शब्द को हटा दिया दासो अहम में से, तो बचेगा क्या फिर, सो अहम, तो सो हम ये अनुभव करा दिया, दासो अहम इस अनुभूति से मैं इस निश्चय से उनके साथ जुड़ा, और जैसे ही ये संबंध उनका और मेरा दृढ़ होता गया उत्तरोत्तर, तो बाद में उन्होंने दासो अहम इसमें से दा को हटा करके सो हम ये निश्चय करा दिया, दासो अहम इस निश्चय से सो अहम इस निश्चय पर पहुंचा, तो स यानि भगवान स्वयं और अहम यानि मैं ब्रह्म हूं ये अनुभूति कराई। तो इस प्रकार भगवान फिर नाम रूप के कारण ही तो भेद है ना, तो भगवान में और आप में भिन्नसा दिखाने वाली जो नाम रूपात्मक उपाधि है ना, उसे इस प्रकार हटाते हैं। पहले अपना दिव्य नाम रूप धारण कर लेते हैं, तो आपके मन को जगत के नाम रूप से हटाते हैं, अपने नाम रूप में स्थापित करते हैं, और फिर आपके बुद्धि में से भगवान का जो दिव्य नाम रूप है उसे भी हटा करके, जिसके कारण आप भगवान के सामने अपने को यत्किंचित समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं कि हम कुछ नहीं हैं, दास मात्र हैं। भगवान कहते लो मैं अपनी भी उपाधि छोड़ देता हूं, जिसके कारण तुम्हें मैं बड़ा दिख रहा हूं। इतना त्याग कोई कर सकता है आपके लिए, जिसके कारण सर्वोत्कृष्ट है भगवान संसार में जीवों की अपेक्षा। किसके कारण है? उसी दिव्य नाम रूपात्मक उपाधि के कारण। भगवान कहते हैं ये उपाधि तुम में और मेरे में यदि भेद करती है, तुम्हें मेरे से थोड़ी दूर रखती है, अलग सी दिखाती है, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूं। इतना त्याग आपके लिए संसार में दूसरा कोई करने वाला नहीं है, मात्र भगवान है। फिर आपको अपने में मिला लेता है, मुक्त कर देता है। ये है भद्र होना, कल्याण होना आपका। तो आपके कल्याण के लिए ये सारी भूमिकाओं का निर्वहन भगवान को करना पड़ता है, भगवान करते हैं। इसलिए अनुग्राहक देवता भी उन्होंने अधिदैव बना ली, आपके उद्धार के साधन के रूप में आपके पास अध्यात्म में ये इंद्रिया भी दे दी, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया। लेकिन जगत का नाम रूप इनको अपने तरफ आकर्षित करता है और जगत के नाम रूप को ग्रहण करती है यदि ये इंद्रिया, तो माना जाता है कि अभद्र ग्रहण कर रही है। जगत अभद्र है, अनर्थ है, अकल्याणकारी है, दुख का साधन है, और आपकी इंद्रियों से भद्र का ग्रहण हो, आपके कल्याण का ग्रहण हो। तो कल्याण का ग्रहण है श्रोत्र इंद्रिय से वेदांत श्रवण, और चक्षु इंद्रिय से भद्रम पश्येम। तो भद्र दर्शन है भगवान के सगुण साकार स्वरूप का दर्शन, और इसलिए ये महाराष्ट्र में पंढरीनाथ के बहुत भक्त हुए हैं ना, तो उसमें से प्रसिद्ध संत हुए तुकाराम महाराज। तो वे कहते हैं पंढरपुर में जो भगवान का स्वरूप है, उस स्वरूप के लिए सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी कर कटेवरी ठेवनिया। कहते ये स्वरूप मुझे बहुत पसंद आता है और बड़ा मधुर लगता है, और सारा फिर मन निरंतर उसी के ध्यान में लगता है। सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी, भगवान का जो पंढरपुर में भगवान कृष्ण का ही रूपांतर है, वो आवड़ते रूप इत्यादि से बहुत सुंदर उन्होंने ये किया है, गाया है। और फिर भगवान उस रूप को भी छोड़ करके, जैसे नामदेव का मन पूर्ण रूप से उस रूप में एकत्रित हुआ, तो अंतिम में फिर उन्होंने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान उनके गुरु विशोबा नाम के जो थे उनके पास भेज करके कराया, उन्हें निर्विशेष का ज्ञान हुआ। लेकिन उसके पहले जीवन में सगुण साकार की उपासना अति आवश्यक है, क्योंकि निर्विशेष का ज्ञान होता किसको है? तो शास्त्र में कहा जाता है जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ती है। इसलिए पराविद्या के प्रकरण में अपराविद्या की भी चर्चा आती है ना, मुंडक उपनिषद में दो विद्याएं बताई जाएगी, पूछी तो थी पराविद्या ही सौनक जी ने, लेकिन अपराविद्या भी बताते। अपराविद्या है कर्म उपासना, और कर्म उपासना जिसने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कर ली है उसी को वास्तव में मोक्ष दिलाने वाला, भ्रम को मिटाने वाला अनुभव हो पाता है। इसलिए शांति मंत्र हमें सिखाते हैं, और उपासना में भक्ति में प्रधानता होती है प्रार्थना की। प्रार्थना में बड़ा बल होता है, शांति मंत्र में सब प्रार्थना की जा रही है कि मेरी इंद्रियां जिससे मेरा कल्याण हो ऐसे शब्द का श्रवण इंद्रिय ग्रहण करे, जिससे मेरा कल्याण हो, ऐसे रूप को ही चक्षु इंद्रिय ग्रहण कर ले। और चक्षु और श्रोत्र उपलक्षण है बाकी इंद्रियों का मतलब कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति आपके अनुग्रह से ऐसी हो जिससे कि मैं मनुष्य जीवन का परम प्राप्तव्य जो मोक्ष है उसे दिलाने वाला आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकूं, जिससे जिस प्रवृत्ति से कार्यक्रम संघात के आत्मज्ञान की योग्यता मेरे अंदर आ जाए, ऐसी प्रवृत्ति मेरे कार्यक्रम संघात से हो, स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से, चक्षुरादि इंद्रियों से। इसलिए कहा कि भद्रं कर्णे भी सुनियाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर। और आगे आया यजत्रा, तो यजत्रा ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में प्रतिबंधक होता है मल नाम का दोष भी। विक्षेप और मल ये दोनों भी प्रतिबंधक है ना, तो विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना, मल की निवृत्ति के लिए कर्म। तो यजत्रा शब्द से कहा जा रहा है कि मल नामक दोष की निवृत्ति के साधन भूत निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने में हम समर्थ हो। यजत्रा तो शास्त्र ने बताए हुए जो अग्निहोत्रादि कर्म है वह करने में हम समर्थ हो जाएं, यजत्रा शब्द का अर्थ है। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि वास्तविक आत्मजिज्ञासा होती है यज्ञ आदि साधनों से। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, एक बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। कहते हैं कि तम विविदिशन्ति, तम यानी परमात्मानम, परमात्मा को विविदिशन्ति जानने की इच्छा करते हैं का मतलब जानने की इच्छा होती है, परमात्म जिज्ञासा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा होती है, सहसा ब्रह्म को जानने की इच्छा मन में नहीं होती। वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा किनको होगी, तो कहते हैं उसके साधन क्या है, वेदानुवचन। तो वेदानुवचन कहा जाता है वेद अध्ययन कर लिया आपने, उसके बाद गुरुकुल में पढ़ लिया और फिर दूसरे आश्रम में आने के बाद, गृहस्थ आश्रम में आने के बाद वो पुस्तकें भी वेदों की वहीं छोड़ करके आ गए गुरुकुल में, और घर में फिर व्यापार धंधे में काम में इतने व्यस्त हो गए कि कभी वेद की पुस्तक निकाल करके देखी नहीं, तो वेदानुवचन नहीं हुआ। वेदानुवचन का अर्थ होता है जो आप गुरुकुल में पढ़ करके आए हो उसका अभ्यास, वेद पाठ का निरंतर अभ्यास बना रहना चाहिए, यानी कि 24 घंटे खाली काम में ही गृहस्थ लगा रहे हैं। गृहस्थ को वेद पाठ स्तुति पाठ आदि करना भी जरूरी है। तो वेदानुवचन का अर्थ है जो आपने सीखा है पहले उसका अभ्यास, वो विस्मृत ना हो, क्योंकि वे शब्द आपके मन में हमेशा बने रहेंगे तो कभी न कभी उनके अर्थ को जानने की इच्छा होगी। तो वेद पाठ करने से, स्तोत्र पाठ करने से, गीता पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, तो इससे अदृष्ट बनता है, पुण्य बनता है ना, उससे चित्त शुद्ध होता है। ये वेदानुवचन है जो हम नियमित पाठ करते हैं, अपने इष्ट देवता की स्तुति करते हैं, उसे वेदानुवचन कहा जाता है। इससे चित्त शुद्ध होगा और शुद्ध चित्त में आत्मजिज्ञासा होगी। शुद्ध चित्त में ही ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। तो वेदानुवचन एक ब्रह्म जिज्ञासा का साधन है। और यज्ञेन, तो यज्ञ है जो अग्निहोत्रादि कर्म रोज करने के लिए जो बताए गए पंच यज्ञ हैं, वो यज्ञ यज्ञेन और दानेन और तपसा अनाशकेन, तो इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह आदि रूप जो तप है, इससे आत्म जिज्ञासा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा होती है। तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए जरूरी है यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान भी। इसलिए कर्म इंद्रिय के तथा शरीर के अनुग्राहक जो देवता हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि हम मल नामक दोष के निवर्तक निष्काम कर्मानुष्ठान में समर्थ बने, वयम यजत्राह भवामः। ऊपर से जोड़ देना कि हम यज्ञ कर्म करने में समर्थ हो जाए। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म हमसे होता रहे। और वही वेदानुवचन का ही यहां पर एक प्रकार से ये अर्थ किया जा रहा है। तुष्टुवांस स्थिरे रंगेश तुष्टुवांस स्तनु भी देवहितम यद आयु तद व्यसेम, ऐसा जोड़ना, यद शब्द है ना, इसलिए उसके तत् का अध्याहार करना। तो देवहित आयु कहा जाता है कि देवताओं की आराधना आपके जीवन के जितने समय में हो रही है उतना समय देवताओं का हित हो रहा है, वो देवहित आयु है आपकी। देवताओं के यजन में आराधना में जो आपके जीवन का समय व्यतीत हो रहा है, 24 घंटे में जितने मिनट व्यतीत हुए देवता आराधन में, उतने समय को माना जाएगा कि आपकी आयु का देवहित समय है, वो देवहित आयु है। और ऐसी देवहित जो आयु है उसे हम व्यसेम का अर्थ है धारण कर लें, ऐसा समय यानी देवताओं की आराधना करते करते हमारा समय जीवन का व्यतीत हो, क्योंकि हमारे ऊपर तीन ऋण हैं और उन तीन ऋणों से मुक्त होने के बाद ही कहा गया कि आप अपने मोक्ष की ठीक से साधना कर पाते हैं। और जब तक ऋणत्रय आपके अंदर रहेंगे तो जैसे लौकिक ऋण किसी का लिया हो तो सुख की नींद सो नहीं सकते आप, रात में चिंता लगी रहेगी, दिन में तो कुछ कार्य करने में व्यस्त होते हैं, समय इधर उधर गुजर जाता है, कमरे में अकेले सोए हैं और किसी का ऋण लिया हुआ है रोज वो मांगता रहता है, तो खूब आराम की नींद आएगी कि चिंता में वो रात गुजर जाएगी। ऐसे आप जन्म से ही तीन ऋण लेकर के अपने साथ आए हुए हैं और इन तीन ऋणों से जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक आप अपने मोक्ष की साधना नहीं कर सकते, मन लगेगा ही नहीं मोक्ष की साधना करने में। वो तीन ऋण हैं देव ऋण पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण, इनसे मुक्ति पाना जरूरी है, इनसे मुक्ति का साधन भी बताया जा रहा है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।